ये विषय पुनर्जन्म और कर्म फल सिद्धांत, इस विषय को रखने का उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं जबकि वास्तविकता कुछ और है। शरीर बनता है बिगड़ता है लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं। यदि ईश्वर की खोज करनी है या अपने स्वरूप को जानना है तो ये निश्चय जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं, अन्यथा अध्यात्म के मार्ग पर चलकर विकास करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। और यदि ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो आदमी दृढ़ इच्छा लेकर इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए अपने कल्याण के लिए और अपने शरीर के मोह को त्यागने के लिए इस विषय को समझना निहायत ही जरूरी है। हर कैंप में एक प्रश्न पूछा जाता है इसको स्टार्ट करने से पहले कि किस किस का विश्वास है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, तो लगभग 90% लोग हाथ उठा देते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। बाकी 10% जो बच जाते हैं उनसे पूछो यदि चलिए पुनर्जन्म को नहीं मानते तो क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है, तो वो हाथ खड़ा करते हैं। 100% लगभग यही होती है कि हाँ भाई मनुष्य को कर्मों का फल जरूरी मिलता है। तो प्रश्न यही उठता है कि किसी ने देशभक्ति में अपनी जान दे दी वो तो मारा गया, फिर कर्म का फल कहाँ मिलेगा। थर्ड प्रश्न क्या था बताओ मिलेगा, तो चुप हो जाता। तो बुद्धि यही कहती है भाई नया शरीर मिलेगा तभी तो कर्म का फल मिलेगा उसको, तो ये पुनर्जन्म होता है। लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन हमारे मानने से और ना मानने से सत्य तो बदलता नहीं, जो सिद्धांत है वो जैसा है वैसे ही रहता है। तो इसीलिए हमें वो चीज मानना चाहिए जिसका प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है, और हम कुछ भी मानते हों अपनी मान्यता को उस प्रमाण के आधार पर बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मानने का कोई आधार नहीं होता ठोस। हम सैकड़ों चीजें मानते हैं सैकड़ों चीजें नहीं मानते, शास्त्र किस बात पे मोहर लगाते हैं वो अटल बात होती है। इसीलिए ये जो विषय रखा जा रहा है अखबार में पूरी तरह से 100% शास्त्रों पर बेस्ड है। इसलिए मैं सारा रेफरेंस के साथ इस बात को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला सिद्धांत देखें पुनर्जन्म का, गीता के दूसरे अध्याय में 22वां श्लोक आता है और एक है 28वां श्लोक, मैं दो श्लोक पढ़ रहा हूं। 22वां श्लोक है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। बड़ा ही सरल सा एक सिद्धांत ये गीता के दूसरे अध्याय में हुआ है। कितनी सरल सी बात है, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो उतार देते हैं नए पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ये देह हमारी पुरानी हो जाती है तो जीवात्मा से त्याग कर देती है और नया शरीर वो धारण कर लेती है। ये जो देह है ना, देह देह की देह यदि संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो बना ही है देह धातु से। देह का मतलब होता है कि लेप चढ़ाना या प्लास्टर करना। इस जीवात्मा के ऊपर ये देह क्या है, ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम देह है। लेकिन क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं इसीलिए देह को अपना आकार मान लिया। ये बार बार सबको देखते हुए भी, रात दिन हम सबको देखते हैं, सबकी देह यह चली जाती है। और ऐसे भी समाज में बड़े एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको पूर्व जन्म की याद भी रहती है, पिछले जन्म की जिनको याद भी रहती है, लेकिन फिर भी हमारा निश्चय पूरा ठीक नहीं बैठता। हम भयभीत रहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, जबकि सत्य है कि जीव की कभी भी किसी भी हालत में मृत्यु नहीं होती। यही बात तो गीता में कृष्ण को अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो रहा है कि मेरे सब संगी साथी सब मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो कृष्ण यही समझा रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से कि भाई अर्जुन, जिस प्रकार जो है ये देह, आपको जो वस्त्र धारण करते हो देह पर, जो प्राणी आते हैं उसको बदल लेते हो, ठीक उसी प्रकार ये जो है देह जो इस जीवात्मा पे चढ़ी है, जो ये पुरानी हो जाती है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, नया शरीर फिर ये जीवात्मा धारण कर लेती है। 28वें श्लोक में देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदनानि एव तत्र का परिदेवना। कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, बीच में ही केवल शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है? अर्जुन को चिंता हो रही है ना कि मर जाएंगे, तो कितना स्पष्ट सिद्धांत है, भगवान कृष्ण खुद सामने खड़े होकर को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जन्म से पहले भी हम बिना शरीर वाले थे और इस शरीर की मृत्यु के बाद भी बिना शरीर वाले ही रहेंगे, लेकिन बीच में जिस काल में हमारा शरीर बना हुआ है उस काल में ही हम शरीर वाले प्रतीत होते हैं, इसीलिए शरीर आया और गया इसकी इस बारे में चिंता क्या है? शरीर तो वहां पर हमेशा ही रहेगा ना, जैसे किसी को पता लग जाए ये वस्त्र मेरे छिन जाएंगे लेकिन दूसरे तुरंत मिल जाएंगे तो चिंता क्या है? उसे चिंता तो तब हो जब वस्त्र छिन जाए और दोबारा पहनने को ना मिले। तो इसीलिए अब देखें, पुनर्जन्म का हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही कोई विचार करता होगा इस बात के लिए कि हमारा पुनर्जन्म का अनुभव कैसा होता है। पुनर्जन्म का मतलब यह है कि आप वही रहते हो लेकिन शरीर बदल जाता है, यही तो मतलब पुनर्जन्म का। इसका एक्सपीरियंस यदि आपको 5 मिनट के लिए करा दिया जाए या 2 मिनट के लिए करा दिया जाए या 50 मिनट के लिए करा दिया जाए तो वो प्रमाण काफी है आपके लिए। आप देखिए कि प्रभु ने कैसी सुंदर रचना की है हम लोगों के लिए। रात को हम जब सोते हैं तो स्वप्न दिखाई पड़ता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसने कभी स्वप्न ना देखा, और स्वप्न जिस समय देखते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर भी वही है और संसार भी वही है, लेकिन जब जागते हैं उस समय जब विचार करते हैं स्वप्न के बारे में तब पता लगता है कि जिस शरीर से मैंने स्वप्न देखा था वो शरीर कोई और था, और जो इस समय जागृत हालत मेरा शरीर है ये तो खाट पर उस समय सो रहा था, क्योंकि स्वप्न में जब पानी में भीगा ये शरीर तो मेरा ऐसी सूखा सूखा है, स्वप्न में मैंने रेस लगाई थी मैं खाट पे वैसे ही लेटा हुआ रजाई ओढ़े हुए, तो इस शरीर से रेस लगाई नहीं लेकिन रेस तो मैंने लगाई थी, तो वो शरीर कौन सा था? इंद्रियां मेरी यही थी, मन भी मेरा यही था, मैं भी यही था, लेकिन शरीर वो दूसरा था, लोग भी दूसरे थे और संसार भी दूसरा था, था वो ऐसे ही देखने में लगभग लेकिन था वो दूसरा। इससे बड़ा प्रमाण आप पुनर्जन्म का क्या चाहते हो? पुनर्जन्म में जैसा कि आपको शुरू में पहले चैप्टर में बताया गया था कि मृत्यु के वक्त इंद्रियां मन बुद्धि यही जो है आपके संग चली जाती है और नए शरीर में ये पुनः प्राप्त हो जाती है, तो स्वप्न में यही तो हो रहा है, यही आपकी इंद्रियां नए शरीर से काम कर रही। एक साउथ में किताब प्रचलित है ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंदू, एक सत्य घटना है ये। वहां एक राजा हुए हैं, राजा ने क्या देखा कि एक दिन एक स्वप्न देखा, स्वप्न में उनका नाम चंदू था। क्या होता है, उनकी एक पनवाड़ी की दुकान है चंदू की, एक पंजी नाम की लड़की सुपारी खरीदने आती है उसके पास। खैर वो उसको वो पसंद आ गया चंदू, तो धीरे धीरे करके 2-4 दिन आती रही वो, और अपनी अदाओं से उसने जो है वो उस चंदू को अपने मोह जाल में फंसा लिया। कोई बात नहीं, दोनों की शादी हो गई, शादी हो गई, तीन बच्चे भी हो गए। तीन बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का था उनका, वो बड़ा ही शैतान था और बड़ा ही क्रोधी भी था। क्या हुआ, क्रोध में आके उस दिन एक दिन उस लड़के ने फांसी लगा ली और मर गया वो। अब राजा के जो सिपाही थे उन्होंने पता लगाया तो निश्चित ये किया कि भाई इस चंदू ने नहीं अपने लड़के को मार दिया, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब उसकी जेल में पिटाई हुई, जब पिटाई हुई तो चीख पड़ा वो। जब वो चीखा तो रानी जो उसके पास सो रही थी उसकी आंख खुल गई, उन्होंने कहा राजन क्या बात है। तो राजा की भी आंख खुल गई। अब वो सोच में पड़ गया कि 20 साल मेरे बीत गए, जितनी देर में स्वप्न देखा उस स्वप्न के काल में 20 वर्ष का समय बीत गया, क्योंकि शादी हुई बच्चे हुए, 20 वर्ष का टाइम उसका एक ही रात के स्वप्न में बीत गया। ये क्या माजरा है। राजा था, बुद्धिमान था, उसने क्या करा, वो अपने कमरे में बंद हो गया। कई दिन बंद रहा, कोई राजपाठ का काम नहीं किया, गहरे विचार में डूब गया। फिर उसने उस चंदू की पर पुस्तक लिखी जो पब्लिश हुई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंदू करके। तो विचार करने की बात यह है कि कहां वो राजा था, कहां वो चंदू बन गया, और सारा उसने भोगा 20 साल तक। यही हमारे साथ होता है। संकल्प राजा का अपना ही तो है, चंदू वो बना, वो सारा उसने जो दुख और क्लेश भोगा उसका अपना ही तो मन है, अपना ही तो संकल्प है। ठीक इसी प्रकार हमारा पुनर्जन्म होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर है। तो ये जो जागृत संसार है ये ज्यादा देर के लिए सत्य है, और जो स्वप्न है वो थोड़ी देर के लिए सत्य है। यदि कोई डिफरेंस है तो इतना है। और यदि कोई डिफरेंस देखो तो स्वप्न के काल के अंदर जो आप कर्म करते हो उसका कोई आपको फल नहीं मिलता, लेकिन इस जागृत संसार में जो कर्म करते हो उसका फल आपका निश्चित हो जाता है। कारण उसका यह है कि स्वप्न में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, यहां आपको बुद्धि मिली हुई है, इसका प्रयोग करते हो, इसीलिए आप कर्म फल से बच नहीं सकते। स्वप्न में किसी का कत्ल भी कर दो उसका कोई फल नहीं आता, कितना दान कर दो तब भी उसका कोई फल नहीं, लेकिन जागृत हालत में यदि काम करो, जो काम करोगे उसका फल आपका निश्चित हो जाता है। इसीलिए ये जो गीता ने सिद्धांत बयान किया, अब देखें कि किस प्रकार से ये महर्षि रमण के आश्रम से एक फ्रेग्रेंट पीटर्स करके किताब पब्लिश हुई थी, उसमें ये मैंने पढ़ा था। अब देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। समता विलास में पेज 467 पर दो और तीन दो वचन पढ़ रहा हूं। जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है, यानी शरीर रूप मकान में जीव रूप मालिक है। वही बात जो गीता कह रही है। अगले वचन में देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। यह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर योनि प्रवेश के एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता। हालांकि ये बात गीता में नहीं लिखी हुई, गीता में ये बात नहीं लिखी हुई है कि नग्न हालत यानी बगैर योनि प्रवेश के एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता, लेकिन ये लिखा हुआ है जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है उसी तरह जीव एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। जो उसकी अंतिम इच्छा होती है उसके अनुसार ही उसको नया शरीर प्राप्त होता है। इसका प्रमाण भी आप देख लो कि कई बार मन में डाउट होता है, इसका अंदर बीच में कुछ दिन भूत बन जाता होगा, कुछ दिन किसी लोक में चला जाता है, ऐसी कल्पना है ना, लेकिन अपने शास्त्रों में कोई चीज छोड़ी नहीं है। इसका आपको देखिए जो ये जो है कि बगैर योनि प्रवेश के एक क्षण भी नहीं रहता, इसका प्रमाण यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें मिलता है। वहां क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़कर बताऊं। तद यथा तृण जलायु का तृण श्यांतम गत्वान्यम आक्रमम आक्रम्यात्मानम उपसंघरति एवं एवायम आत्मेदम शरीरम निहत्य अविद्याम गमयित्वा अन्यम आक्रमम। अर्थात जिस प्रकार घास पर चलने वाला कीड़ा, जिस प्रकार घास पर चलने वाला कीड़ा तिनके की नोक तक पहुंचने पर अगले तिनके पर जाने के लिए अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा स्वयं को संकुचित करके इस शरीर को अडोल हालत में छोड़कर अगले शरीर को धारण कर लेती है। इसमें जो देखो उपनिषद में जो एग्जाम्पल दिया, कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, किस तरह का सिलेक्शन किया है ऋषि ने उन शब्दों का। एक कीड़ा देखा होगा कभी आपने, जो रोए होते हैं उसके ऊपर और चलता है तो अंगों को सिकोड़ के चलता है। ये कभी घास के तिनके पे जा रहा हो वो, तो जब तिनका खत्म होने वाला होता है तो अगले तिनके पे पांव रखना चाहता है, लेकिन पहले क्या करेगा, पूरे अंगों को सिकोड़ लेगा, सिकोड़ के फिर फैलाएगा और फिर नेक्स्ट तिनके पर अपना जमा के फिर अंगों को उतार लेगा उसको। ये उसकी क्रिया होती है। वो कह रहे इसी प्रकार से जीवात्मा स्वयं को संकुचित करके इस शरीर को अडोल हालत में छोड़कर अगले शरीर को धारण कर लेती है। ये जीवात्मा संकुचित कैसे करती है अपने आप को? जीवात्मा के अंग क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को अपने आप में ही सिकोड़ लेती है। मतलब इसमें शरीर में कुछ नहीं छोड़ती, ना इसमें इंद्रियां छोड़ती है वो, ना मन को छोड़ती है, ना बुद्धि को छोड़ती है। सिकोड़ कर फिर नए शरीर के अंदर वो इमीडिएटली प्रवेश करती है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, बीच में एक सेकेंड का भी गैप नहीं होता। अब बताइए, समता विलास जब पढ़ेंगे भूत प्रेत का सिद्धांत, भूत प्रेत पितर का सिद्धांत, वहां महाजी कहते हैं कि बगैर योनि प्रवेश के जब जीव एक सेकंड रहता ही नहीं तो भूत कहां से बन गया। जीव जहां भी रहेगा मैं शरीर के ही रहेगा, इसके लिए वेद भी पुष्टि कर रहा है, गीता भी पुष्टि कर रही है। और महाजी से एक बार प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्नोत्तर भी देखें जरा। देखिए ऋषियों की बातें कितने हजारों साल हो गए इस वेद की रचना को, लेकिन आज के युग में भी वही बातें ऋषियों की मेल खाती है, क्योंकि एक ही ईश्वर है ना, वो विभिन्न रूपों में अवतार ले रहा है, सत्ता एक ही है जो बात कर रही है आज, इसलिए उनकी बात बिल्कुल एक जैसी होती है। कहां तो वैदिक काल और कहां देखिए आज का आधुनिक काल। तो गुरुदेव से प्रश्न पूछा गया तो क्या उत्तर देते हैं वो? प्रश्न नंबर 30, ये गुरुदेव ने कहा, शरीर छोड़ने के बाद क्या रूह को उसी समय फिर चोरा मिल जाता है, या किसी दूसरी जगह और हालत में भी रूहें रह सकती हैं? ये बड़ा ही स्पष्ट सिद्धांत है। अब उत्तर क्या देते हैं? जब तक भोग वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती रहती हैं, जीव चाहे जिस हालत में भी रहे भटकन बनी रहती है। जीव का सफर खत्म नहीं हो सकता, यानी ठिकाने नहीं लग सकता। शारीरिक यात्रा का सफर खत्म हो जाने से इसकी खुलासी नहीं हो जाती, यानी मुक्ति नहीं हो जाती। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करने तक कोई देर नहीं लगती। जिस तरह जोंक चल रही है, चांस की बात थी उस समय महाजी के सामने एक जोंक चल रही थी, उसकी तरफ इशारा करके बोले जिस तरह जोंक चल रही है, अगला मुंह जब तक तिनका पकड़ नहीं लेता तब तक पिछला हिस्सा उठाकर आगे नहीं बढ़ती। यही हर एक जीव का हाल है। जिस भी शरीर में जीव रहे, हर तरह की शारीरिक कैद दुख का ही स्वरूप है। हर तरह की शारीरिक कैद दुख का ही स्वरूप। भोग वासनाएं बार बार जीव को जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं। राजा, राणा, अमीर, गरीब, भिखारी, पशु पक्षी, या जल में विचरने वाले या आकाश में उड़ने वाले, सब भोग वासना को पूर्ण करने में लगे हुए भटक रहे हैं। किसी भी आकारमयी हालत में हो, किसी को आराम नहीं। बगैर तत्व ज्ञान के कभी भी जीव इस जीवन संग्राम में शांति नहीं पा सकता, ना ही इसका सफर पूरा होता है। पशु पक्षी जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े सांप लाखों किस्म के शरीरधारी जीव जो हैं अपनी अपनी प्रकृति का ज्ञान सबको है यानी शरीर का, मगर तत्व ज्ञान इस मनुष्य देह में ही पाकर बंधन से जीव निर्बंधन हो सकता है। दूसरी रूहों को छोड़ो, अपनी रूह की बंधन अवस्था को पहले जानो और फिर बंधन से निर्बंधन होने की सोचो। सोचिए जरा, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, साधारण ये विषय नहीं है पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत का। सारी जिंदगी हमारी इस पे खड़ी है और ये जन्म नहीं अगला जन्म भी इसी ज्ञान पर खड़ा हुआ। इस ज्ञान को समझकर यदि हमने अपना इस संसार का क्रियाकलाप नहीं किया तो ये जन्म तो बिगड़ा ही हमारा, अगला जन्म भी पूरी पूरी तरह बिगड़ जाए, क्योंकि जब बीच में गैप है ही नहीं, ये शरीर गया इमीडिएटली दूसरा मिलना है और हमारी इच्छा के अनुसार मिलना है। लेकिन इच्छा के अनुसार शरीर मिलने के बाद भी वहां हम स्वतंत्र नहीं होते, जो सुख दुख का जो प्रारब्ध है हमारा वो उसके साथ नए शरीर के साथ नया पैकेज हमको अलॉट हो जाता है, वहां हम स्वतंत्र नहीं है कर्म करने के लिए। जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है उस आध्यात्मिक प्रगति को करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन संसारी कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, उसमें पराधीनता है। वहां जितने भी सुख दुख मिलने हैं वो हमको प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेंगे। तो कैसी पराधीनता है, देखो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमको शारीरिक कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, हमको मजबूर किया जाता है, कर्मों में ढकेला जाता है। जैसे अर्जुन देखो ना, बड़ा बुद्धिमान था, क्षत्रिय था, मौत को हाथ में लेके घूमता था, कोई मरने का भय नहीं था उसको, दूर दूर था वो गांडीव अपने मौत की वजह से डर के नहीं रख रहा है वो, बल्कि और लोग मर जाएंगे मेरे कारण से इसलिए वो रख रहा है। लेकिन कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तेरे बस में नहीं है, तू जब चाहे युद्ध करे जब चाहे ना करे, जो तेरा प्रारब्ध है उसके अनुसार तुझको शारीरिक कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो बंधन की हालत है इससे बड़ी कैद क्या होगी आपको, कि शरीर मिला हुआ है मनुष्य का फिर भी हमको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन संसार में जो संसारी लोग हैं मुझे समझते हैं हम बिल्कुल स्वतंत्र जैसे चाहे करें। तो इसीलिए अध्यात्म विद्या का सीखना बहुत जरूरी है, और वो भी शास्त्रों पर बेस जो नॉलेज होती है। मनमानी तरीके से जो बातें सुन रहते हैं, किसी ने किससे कहानी सुना दी सत्संगों में, उससे क्या होता है। यदि हम आज पढ़े लिख गए हैं, ये युग ऐसा कि जो पढ़ाई लिखाई का युग है, तो उसका फायदा उठाओ, शास्त्रों को खुद पढ़कर देखो, नहीं तो भेड़ चाल में आप भी लग जाओगे, अपना ये मनुष्य जन्म कीमती खोदोगे, ना आपकी पूजा ठीक होगी, ना आपका सत्संग ठीक होगा, ना आपकी जिंदगी ठीक चलेगी। देखा देखी जो काम करते हो वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ये रात का पीरियड है अभी का नहीं। तो इसीलिए बाहोश होकर शास्त्र को पढ़ना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगली बात, हमारी गति कैसे होती है इसके बारे में पहले समताबलास देखें वो क्या करें। पेज 469 पर 8 से 10 तीन वचन पढ़ रहा हूं मैं। जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, दूसरे महापुरुष वगैरह उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। जो इस सहारे पर हैं कि हम खुद नेक ना बने और पुत्र वगैरह या कोई पंडित निजात दिलाएगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी ही बंधन रूप है, यह मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक काम कर कर्म करने की कोई जरूरत ना थी, और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत ना पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। यही मसला आवागमन है अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो अपने सत बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक। अगला वचन है, गति के मायने कल्याण के हैं, गति के मायने कल्याण के हैं। देह की गति यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे, यानी पानी में बहा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। देखो तो सत्पुरुषों का के अंदर कैसी क्लैरिटी रहती है कि शरीर बिल्कुल अलग है और जीव बिल्कुल अलग है। जब जीव की गति की बात करते हैं, मैं अपनी गति की बात करता हूं, तो कहते हैं कि जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। दूसरे लोग तो आपके शरीर को देख रहे हैं, आपको तो जानते नहीं हो, शरीर की गति कर देंगे, कोई पेड़ से लटका देगा, कोई आपकी बॉडी को कुएं में लटका देगा, पक्षियों को खाने पीने के लिए कोई आगे में जला देगा, कोई मिट्टी में दबा देगा, वो गति कर देंगे। लेकिन जो जीव है, जो शरीर में रह रहा है, उसकी गति तो जीव ने खुद ही करनी। तो उसकी गति के लिए गुरुदेव अगला वचन में कहते हैं, जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे, यही असली गति। जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, जब उसके खुराक ठीक होती है, लिबास ठीक होता है, विचार ठीक होते हैं और उसकी संगत ठीक होती है, तो नेचुरली है उसकी कोशिश भी ठीक होगी। जब कोशिश ठीक होगी तो जीव अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, ये उसकी गति है। अपनी गति अपने हाथ से करके आता है, जैसे सत्पुरुषों ने अपनी गति खुद करके गए, गुरुदेव की गति कौन करेगा, उन्होंने अपनी गति शरीर के रहते रहते कर ली। जीव अपनी गति शरीर के बाद नहीं करता, शरीर के अंदर रहते रहते जीव अपनी गति कर लेता है। जिस प्रकार गुरुदेव का शरीर में जीव बोल रहा है या ईश्वर सत्ता बोल रही है, आप ये देख लो ना, वो जीव अपने मूल स्वरूप में आ गया, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और हमने भी वही काम करना है। तो इसीलिए गुरु धारण किया था, जो जीव खुद अपने प्रयास से ईश्वर बन गया, वही जीव हमारा कल्याण कर सकता है, जिसको हम गुरु कह रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। तो उसके जो वचन है, उसकी जो वाणी है, वही हमारा कल्याण करेगी। यदि उसको पढ़ने का शौक ही नहीं, उसको समझने का शौक नहीं है, केवल लोगों की बातें सुनते रहते हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, तो हमारी बुद्धि तो भ्रमित हो जाती है। तो इसीलिए सत्पुरुषों की जो इतनी मेहनत से उन्होंने सारा जीवन का तप करके ये बातें हमारे लिए छोड़ जाते हैं, हमारे कल्याण के लिए, उसको पढ़ने तक का समय नहीं होता हमारे पास। जिस जो हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी तो हम सीख लेते हैं, जो हमारी मातृभाषा नहीं है, ना लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना सुनने से उसका अर्थ समझ आता, उसको भी सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा में है उसको पढ़ने तक ही फुर्सत नहीं होती। मतलब ये विचार ही नहीं है कि इसके इसके द्वारा मेरा जीवन सफल होगा। मेरे जीवन की सबसे कीमती वस्तु तो ये है, ये होश ही नहीं इस बात। देखिए गीता इसी बारे में, गति के बारे में क्या करिए, अध्याय 8 का 6 श्लोक पहले पढ़ रहा हूं मैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि अंतिम वक्त जो संकल्प उसके मन के अंदर उठता है, उसी संकल्प के अनुसार उसको अगला जन्म और अगली योनि उसको प्राप्त होती है। इसके आगे कह रहे हैं अध्याय 14 में, 14 से 16 तीन श्लोक हैं इसमें। अब किस प्रकार के कर्म करके जीव को कैसी योनि मिलती है इसके बारे में ये सिद्धांत गीता में वर्णन किया गया है। 14वां श्लोक, यदा सत्व प्रवर्धे तु प्रलयम याति देहे भ्रत तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि जब इसमें सत्व गुण प्रधान होता है, जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात विकार रहित लोकों को प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग मिल गया, इस स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यही है। आपका जन्म ऐसे माता पिता के घर में, ऐसे समाज में होगा जहां की कंडीशन बड़ी अच्छी होंगी, जहां शैतान लोग नहीं बसते होंगे, देवता समान लोग होंगे, उनकी जो वृत्ति होगी वो देव वृत्ति होगी। जैसे गुरुदेव का जन्म हुआ, उनके जो बाबा थे सुंदरदास जी, वो कितने लगभग संत संती थे, तो कैसा कुल था उनका, शुद्ध लोग, माता कितनी पवित्र, पिता उनके कितने सदाचारी, आप देखिए ना सारा खाना कैसा था। इसका मतलब ये नहीं था कि बाहर से पैसा होता है ये होता है, होगा भी तो हो, ऐसा तो सतपुरुष पैसे को भोगेगा कहां, ऐसा तो सतपुरुष को पैसा मिल भी जाए तो भोगेगा क्या, वो तो सेवा में लगा देगा। देखा गुरुदेव जी ने माँ ने नया कोट पहनाया, वो किसी गरीब बच्चे को पहनाया, पराठे खाने को दे रही है, उसकी सूखी रोटी पे मंगत खुद पल रहे हैं और पराठे जो है वो गरीब बच्चे खा रहे हैं, तो भोग विलास मिल भी जाए तो वो भोगता खाए। इसीलिए यही ऐसे ही योगी गुरु हुआ करते हैं, ऐसे उच्च कुल जो सतोगुणी वृत्ति के लोग होते हैं, जो मतलब कि पूर्व जन्म में ईश्वर भक्ति करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, इस प्रकार का जिनका जीवन हुआ करता है, खान पान शुद्ध है, जिनके विचार शुद्ध हैं और ईश्वर मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो सतोगुणी जीव है। तो वो जब उनका शरीर शांत होता है बीच में, तो अगला जन्म का इस प्रकार के कुल में हुआ करता है। अब दूसरी प्रकार के लोग, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ योनिषि जायते। कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो आजकल जो संसार में ज्यादातर लोग शहरों में रजोगुण वाले मिलेंगे, सुबह से लेके रात के 12 बजे तक दुकान में लगे हुए हैं, सुबह से रात का पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं है, वो पैसा कमाना ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मैंने जितनी ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा ज्यादा पैसा कमा लूंगा। जैसे दुकानदार सुबह से लात लगा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट भी, वो पढ़ाई नहीं है उसके, पैसा कमाई है वो एक तरह से, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य ही केवल पैसा कमाना है। तो इस प्रकार ये जो कर्म प्रधान लोग होते हैं, जो भोग विलास के लिए संसार के सुखों के लिए कर्म करते हैं, ये सब रजोगुणी वृत्ति के लोग। तो रजोगुणी वृत्ति के लोग जो है, यदि उस रजोगुण ऐसे घरों में उत्पन्न होते हैं जहां के लोग कर्म में बड़े प्रबल होते हैं और भोग विलास में भी बड़े शौकीन होते हैं, और जो तमोगुणी वृत्ति के लोग हैं वो तो आप जानते हैं, जो संसार में रहकर पाप करते हैं, वो कहते हैं कि मूढ़ योनि में चले जाते हैं, कीट पशु इस प्रकार के पक्षियों की योनि में वो चले जाते हैं। लेकिन एक बात कभी मन में उठती है, क्या फर्क पड़ता है मैं ईमानदारी से कमाई करूं, ईमानदारी से पढ़ूं, ईमानदारी से पैसा कमाऊं और उसका सामान खरीद के लाऊं और भोग विलास करूं, इससे बुरी बात क्या है, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, आम व्यक्ति यही सोचेगा ना। लेकिन देखो गीता कह क्या रही है कि ये सोच ले कि मनुष्य की योनि इस काम के लिए नहीं मिली है, इस काम का परिणाम क्या निकलेगा ये सोच ले जरा, हम ईमानदारी से चलें, कोई बेईमानी ना करें, खूब पैसा कमाएं, खूब संसार के भोग विलास करें, उसका परिणाम होगा क्या ये भी सुन ले गीता, गीता क्या कह रही है। कह रहे हैं कि कर्मणा सुप्रतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। कहते हैं सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि ये निर्मल फल होता है। कहते हैं राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। अब राजस कर्म जो है, जो हम कहते हैं कि संसार का पैसा खूब कमाए, खूब भोग विलास करें, कहते हैं इसका जो फल है वो दुख है। इसलिए देखिए, जैसे जैसे आप रजोगुणी होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी भोग वासना बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, आपकी बुद्धि के अंदर अंधेरा आने लगता है और आपकी बुद्धि के निर्णय धीरे धीरे करके गलत होने लगते हैं। और गलत होने का निर्णय क्या होता है कि दूसरे को दबाकर आप पैसा कमाना चाहते हैं। आज विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज है, आप देख लो कि किस प्रकार से उन्होंने गरीब कंट्रियों पर शासन किया, हमारे देश में भी कितने 100 वर्ष शासन किया और हमारी क्या दुर्दशा कर दी देश के लोगों की। लेकिन अपने देश के लिए तो वो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े देशभक्त लोग कहलाए, वो इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनका कर्म बिगड़ गया, नहीं बिगड़ गया। और उसका नतीजा फिर क्या हुआ, जिस देश ने भी दूसरे देश को दबाया था, उसके बाद ऐसे देश पैदा होगा कि उनको भी दबाने वाले हो। मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप सब जानते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री आप सब जानते हो। तो ये नतीजा होता है। तो ये शास्त्र ही हमारी आंख खोलते हैं कि हम यदि मनुष्य जन्म लेकर ईमानदारी से भी कमाया, यदि भोग विलास से फंसे हुए हैं, तो समझिए कि हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। तो महाजी ने समता विलास में बड़ा ही स्पष्ट लिख दिया है कि जिस घर में, जिस गृहस्थ में, जिस समाज में ये सत्संग का प्रचार नहीं, मतलब जिसमें ये ज्ञान का आदान प्रदान होता ही नहीं है, तो वो समाज एक दिन सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। उस समाज का, समाज में हमारा हमारा गृहस्थ गृहस्थ भी आता है, हमारा इंडिविजुअल जीवन भी आ जाता है, व्यक्तिगत जीवन भी आता है, वो बर्बाद होना ही होना है। क्योंकि संसार के भोग विलास करने के कारण आपके अंदर जो 5 विकार हैं, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, इसकी वृद्धि निरंतर होती रहती है। और जिस बुद्धि के अंदर 5 विकार की वृद्धि होगी, वो बुद्धि मलिन तो होनी होनी है, उसके निर्णय आज नहीं तो कल उल्टे होंगे जरूर, उसका परिणाम क्या होगा, सर्वनाश। इसलिए सारे शास्त्र जो है वो एक मत से कहते हैं कि यदि पैसा बढ़ भी जाए आपके घर में, तो उसको भोगो मती, उसको त्याग करने की कोशिश करो, दूसरे का दुख में, निष्काम सेवा में खर्च करने की कोशिश करो। तो ज्यादा भोगी परमेश्वर तो शास्त्र देते ही नहीं कहीं पर। इसलिए ये ना सोचे कि हम ईमानदारी से कमा के अपना पैसा है कोई बात खा ले ना। इसीलिए सिद्धांत आता है वो दान का, कि भाई बिना दान करे हुए आप खा नहीं सकते। गीता भी कह रही है वो आप व्यक्ति चोर और पापी है, जो जितना कमाता है सारा सारा खा जाता है। एक प्रेमी हमारे नंदलाल जी हैं हल्द्वानी में, उनका इलाका था ये रावलपिंडी का, एक कुरी जगह थी, रावलपिंडी के एक गांव का इलाका था वो। तो महाराज जी एक बार वहां गए थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि भाई ये नया जन्म होता है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, और जिस समय जीव मरता है उसको सारे अपने कर्म याद आ जाते हैं, सारा चिट्ठा उसके सामने आ जाता है। तो एक मुसलमान भी वहां बैठा हुआ था, तो मुसलमान तो वो कुछ मानते कुछ नहीं मानते, लेकिन वो महाराज जी को एक किस्सा सुनाने लगा। उन्होंने कहा पीर जी, एक किस्सा मेरे आंखों के सामने का है, वो मैं आपको सुनाता हूं। बोले हमारे गांव में एक हाजी जी हैं, जो हज कर आता है उसको हाजी बोलते हैं। बोले उनका, उनकी जब मौत होने वाली थी तो बड़ा दुखी थे वो, बड़ा चिल्ला रहे थे, वो बार बार कहते थे कि मेरे खच्चर काट रही हैं, खच्चर काट रही हैं। तो क्या हुआ, जब उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, खास खास लोगों को, और फिर सारी अपनी कहानी उन्होंने सुनाई कि मैंने जिंदगी में करा क्या है। वो उन्होंने क्या करा था, एक ठेका लिया था, ये अंग्रेजों का राज था उस टाइम हिंदुस्तान में, तो ये खच्चरों को जो ये राशन पानी जो सप्लाई होता था उसका ठेका उसके पास था। तो वो और जो स्टोर कीपर था दोनों मिल गए, उन्होंने कहा भाई ये तो जानवर हैं, आधा खाना दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आधा बेच के अपना पैसा कमाओ। खैर वो अपने काफी पैसा कमा लिया, फिर उसने वो छोड़ छाड़ के अपने गांव आ गया। उन्होंने कहा कहीं मैं पकड़ा गया, बाद में इंक्वायरी हुई तो फंस जाऊंगा, इसलिए वो छोड़ छाड़ के चला गया। अब मन में पाप तो था उसके कि मैंने कमाई की है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए। तो दो बार वो हज करने गया मक्का मदीना, तो हज करके आया, काफी अपने गरीबों की अपने दावत करी, किसी का इलाज कराया, इस बार काफी उसका वो गांव में फेमस हो गया। अभी जो सेवा करेगा नहीं, फेमस तो हो जाएगा, तो हाजी के नाम से वो फेमस हो गया। अब उनके अंदर की करनी तो पता थी उनकी, तो जब उनकी बीमार पड़े, जब मौत आने वाली थी, उनके प्राण ना निकले, जब गफलत में आया, तो उस समय वो जो खच्चरे जिनका राशन खुद खा गए थे, वो खच्चरे उनको काटती थी उस समय गफलत की हालत में, वो चिल्लाते थे खच्चरे काट रहे। तो जब वो होश में आया तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, तो फिर अपनी सारी कहानी उन्होंने बताई कि भाई जो तुम मुझको समझते हो मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता यह है कि मैंने खच्चरों का जो राशन था उसको बेच के ये कमाई करी, उससे मैंने हज किया, उससे मैंने ये गांव में दान पुण्य किया, नहीं अब वो मेरे काटते। तो जब उसने अपना पाप ये बयान कर दिया तब उसके प्राण निकले। अब ये महाराज जी के सामने उसने सुनाई थी। सोचो जरा कि आप कहीं भी कोई भी कर्म छुपके भी कर लो, वो कर्म का फल आपका निश्चित हो जाता है। दान पुण्य से भी वो कर्म का फल नष्ट नहीं होता, पुण्य का फल सुख अलग से मिलेगा, लेकिन जो पाप कर लिया है उसका फल दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, ये याद रखिए। बिल्कुल इस प्रकृति में कर्म का फल अटल है, कोई सत्पुरुष भी उस कर्म फल से आपको नहीं छुड़ा सकता। भाई समतावला से पढ़ेंगे हम कि गुरु पीर नबी पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है, इस प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए हमको इस ज्ञान के आधार पर सोचना चाहिए, ताकि जो सतमार्ग पर चलेगा, ईश्वर मार्ग पर चलेगा, नेचुरली ऐसा कर्म शुद्ध होगा। अब गीता का एक तीसरा अध्याय का 33वां श्लोक है, कहते सदृशम चेष्टते स्वसया प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कई बार ऐसा होता है कि हम जो संसार में कर्म करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन गीता क्या कह रही है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवर्ष हुए यानी स्वभाव के वशीभूत हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हठ क्या करे। अब आप देखिए कि आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने को मजबूर हैं, और यह स्वभाव ही लेकर आप इस शरीर को त्याग करते हो, और उस स्वभाव के अनुसार आपको नया शरीर मिल जाता है। तो जब स्वभाव जो मिला, जो बनाया आपने इस कमाई करी स्वभाव की, उसी के अनुसार आपको नया शरीर प्राप्त होगा, उसमें वैसे ही कर्म करने के लिए आप फिर मजबूर हो जाओ। तो आगे इस सिद्धांत के बारे में क्या कहती है गीता, 18वें अध्याय का 59-60 दो श्लोक पढ़ रहा हूं। अब अर्जुन जो है, जो युद्ध करने के लिए रुका हुआ है, उसको कृष्ण कह रहे हैं, यत अहंकारम आश्रित्य ना योत्से इति मन्य से मिथ्या एषा व्यवसाया ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्षति। जो तू अहंकार को धारण करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। देखिए कृष्ण सामने खड़े हुए हैं और अर्जुन जैसी हस्ती भी सामने पास में उनके, लेकिन स्वभाव के बारे में अर्जुन मजबूर है, कृष्ण भी इसको नहीं बदलने की बात कर रहे। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि स्वभाव जैन कौनते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर तुम न इच्छसी यत मोहात करिष्यसी अवशा अपितत। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। यहां सीखने बड़ी एक गहरी बात आने वाली है, सीखने की बात, कि प्रश्न ये उठता है, यहां पे एक बड़ा गहरा प्रश्न उठता है कि जब जो कुछ भी स्वभाव हमको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं, और वो कर्म करने के लिए मैं मजबूर हूं, मेरे शरीर से जो जो कर्म होने वो होके रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता, तो अब बताइए उस फिर भी मुझको उस कर्म फल का हकदार बना दिया जाता है। एक तरफ तो मैं मजबूर किया जा रहा हूं कर्म करने के लिए, दूसरी तरफ उस कर्म को करने का कर्ता मुझको बनाया जा मुझको, तो ये क्या चक्कर है, ये चक्र क्या है? एक तरफ तो ईश्वर मुझसे कर्म करवा रहा है लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, तो इसलिए कर्म का फल का हकदार भी मैं ही बन रहा हूं, बुरे का भी और अच्छे का भी। तो फिर ये अध्यात्म विद्या क्या है, ये अध्यात्म विद्या कहां हमारी सहायता करती है? कर्म जब हम बदल नहीं सकते तो अध्यात्म विद्या क्या सहायता करती है? देखिए अगले श्लोक में इसकी पूर्ति होती है। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए यानी स्थित हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब कहते हैं कि अब ये बात सीख ले तू, तेरे अंदर ही तेरे हृदय में ही ईश्वर खुद भी बैठा हुआ है और तेरे ही अपने प्रारब्ध के अनुसार, तेरे ही अपने स्वभाव के अनुसार जो तूने निर्माण किया उसके अनुसार तुझको कर्मों के अंदर भरमा रहा है। ये ईश्वर बैठा हुआ ये काम कर रहा है लेकिन तू क्या कह रहा है कि मैं करने वाला हूं। तो अध्यात्म विद्या यही तो है बस। महाजी की वाणी क्या कह रही है देखो, संतरा ग्रंथ में, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है। गया करना भी तूने यही है ना, तू अपने आप को कर्ता मानता है इसीलिए कर्तापन मूल माया है। यही तो तेरा, यही से तो प्रारंभ हुआ तेरा ज्ञान का। तूने तेरा विकास कैसे होना है सीखना तूने क्या है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। जो हृदय में बैठा है इस शरीर को चला रहा है ईश्वर और तू ये समझ रहा है अपनी मूर्खता से कि मैं चला रहा हूं, ये तेरी अज्ञानता है। जिस दिन भी तुझे इस बात का पूरा ज्ञान हो जाएगा, कहते हैं कि यही सार है ज्ञान, तू ज्ञान में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तू खुद ईश्वर बन जाएगा। तो इसीलिए अंतिम बात वो कह रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की ही कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसीलिए महर्षि रमण से पूछा गया कि महर्षि जब ईश्वर ही हमारे सारे कर्मों को कराता है तो फिर इस कर्म फल जो सुख दुख के रूप में है इसका असर हम पर क्यों पड़ता है? वास्तव में उन्होंने प्रश्न तो दूसरा किया था, उन्होंने प्रश्न ये किया था कि ईश्वर खुद तो आनंद रूप है ऐसा सुना है लेकिन उसने जो संसार की रचना की है, कहता ऐसे कहते ना ईश्वर ने रचा संसार, तो इसमें उसने दुख क्यों पैदा कर दिया? तो महर्षि रमण बोले कि दुख उसने इसलिए पैदा कर दिया कि तुम ईश्वर की तरफ चल सको। आगे जब पूछा गया कि ईश्वर भक्ति से क्या फायदा है, क्यों की जाती है, कर्म जब हमारा बदल नहीं सकता, कर्म जब हमारा बदल नहीं सकता सुदुख तो मिलेंगे, तो उन्होंने कहा देखो ईश्वर की भक्ति कर्म में परिवर्तन के लिए नहीं की जाती, ईश्वर की भक्ति कर्म फल से मुक्त होने के लिए की जाती है। कर्म का जो फल है सुख रूप होगा या दुख रूप होगा लेकिन आप दोनों से ऊपर उठ जाओ इसके लिए ईश्वर भक्ति। आप समतावला से पढ़ेंगे महाजी भी ये बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। कर्म से तो शरीर बना हुआ है और इसका संचालन ईश्वर अंदर बैठा हुआ कर रहा है, ये तो मेरा एक वहम है, मेरा अहंकार है कि मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर ईश्वर की भक्ति बढ़ती है, ईश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप बनती है, वैसे वैसे आप अपने आप को कर्ता छोड़कर ईश्वर को कर्ता स्वीकार करना शुरू कर देते हो। जब पूरी तरह से ईश्वर पे प्राण हो जाते हो हर वक्त आपको ईश्वर याद आता है, चाहे बड़े से बड़ा काम बिगड़ जाए आपका चाहे बड़े से बड़ा काम बन जाए, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आता, फिर पश्चाताप भी कोई नहीं आता, केवल ईश्वर की आती है, प्रभु तुम ही करने वाले। हर वक्त मुझे है प्रभु के नशे में रहता है, तो फिर तभी उस हालत में ही प्रभु जो है वो योग क्षेम वहन करते हैं आपका, वर्तमान हालत में नहीं करते। वो जो उनके अनन्य शरण में है उसका वो सारा काम प्रभु खुद करते हैं, उसके ऑफिस की फाइलें प्रभु कर देंगे। गुरुदेव के जीवन में कर चुके हैं, आप जीवनी पढ़ो गुरुदेव की, तो जब मिलिट्री स्कूल में थे एक दिन वो जब ध्यान तो रात सारी रात बैठे रहते थे, चांस की बात थी वो ऑफिस नहीं पहुंच पाए। उस दिन ऑफिसर ने आना था, इंस्पेक्शन होना था, तो आ गया। जब गुरुदेव पहुंचे तो उन्होंने चपरासी से पूछा कि भाई क्या हुआ इंस्पेक्शन का, तो मैं तो आ नहीं पाया। तो क्या कह रहे हैं आप तो उपस्थित थे। तब गुरुदेव जो है देखा कि क्या करिश्मा है। तो सत्पुरुषों के जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है। कितने सत्पुरुष के आप उदाहरण देखते हो, ये योग क्षेम जो है उस व्यक्ति का वहन होता है जो पूरी तरह से ईश्वर प्रणाता है। तो हमारा ये जो सिद्धांत ये था पुनर्जन्म और कर्म फल सिद्धांत, ये इसलिए रखा गया था ताकि हम जो संसार परायण होकर अपने अहंकार के परायण होकर कि मैं करने वाला हूं, ये जो हम संसार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको केवल दुख मिलेगा। दुख का मतलब ये समझ लिए कि मानसिक बेचैनी समझ लिए, क्योंकि दुख के साथ जो इंद्रियों का दुख है वो तो उसमें सुख भी मिल जाता है, लेकिन दोनों का परिणाम मानसिक बेचैनी होता है। जिसको गीता में कहा कि रजोगुण का जो परिणाम है वो दुख है, उसको ध्यान रखें कि आपका मानसिक क्लेश संसार का हर कर्म बढ़ाएगा। जितनी संसार आधारित जितना आपका जीवन है उससे आपका मानसिक क्लेश बढ़ेगा। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है, ईश्वर विज्ञान को समझें और ईश्वर जो हमारे हृदय में स्थित हुआ सारे शारीरिक क्रिया को करवा रहा है हमसे, वो उस ईश्वर के प्राण होकर उस ईश्वर की भक्ति जब करेंगे तभी सही रूप में ये मानव जीवन सफल होगा और हमारा कल्याण होगा। ओम ब्रह्म सत्यम।